آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
سامعین، ہر سال آسٹریلیا میں کنگز برتھ ڈے کے موقع پر ان لوگوں کو آرڈر آف آسٹریلیا کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے جنہوں نے کسی خاص شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہوں۔ اس سال ایسی ہی ایک شخصیت جناب محمد علی صاحب کی بھی ہے، جنہیں سماجی خدمات کے سلسلے میں جنرل کیٹیگری میں آرڈر آف آسٹریلیا کا اعزاز دیا گیا ہے۔ ان سے ایس بی ایس اردو کی خصوصی گفتگو سنیے اس پوڈ کاسٹ میں۔ آپ کے لیے ذاتی طور پر آرڈر آف آسٹریلیا حاصل کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اور یہ آپ کے کمیونٹی سروس کے سفر کی کیسے عکاسی کرتا ہے؟
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آرڈر آف آسٹریلیا کے ایوارڈ ملنے پر یاد فرمایا کہ میں اپنے محسوسات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس اعزاز کا بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر اس ایوارڈ کا حصول بہت فخر کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فخر نہ صرف ایک شخصی فخر ہے جو میں محسوس کرتا ہوں اپنے لیے، بلکہ یہ ایک اس بات کا بھی مجھے فخر ہے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ مجھے اس قسم کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ایک اور بھی احساس جو اس ایوارڈ سے جنم دے رہا ہے وہ یقیناً عاجزی اور انکساری کا ہے۔ میں بار بار میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں واقعی میں اس قابل ہوں کہ اس قسم کا ایوارڈ مجھے دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سماجی کام اور چیریٹی ورک بہت سارے لوگ آسٹریلیا میں، کیمبرا میں بہت عرصے سے کر رہے ہیں، تو میں اپنے آپ کو ان میں بہت کمتر محسوس کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں خوش نصیب تو ہوں لیکن ان لوگوں کو بھی اس میں شمولیت کا موقع ملنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جو بار بار میرے ذہن میں آتی ہے کہ میں 2022 میں کیمبرا سٹیزن آف دا ایئر مجھے دیا گیا تھا، اور آج 2026 میں یہ آرڈر آف آسٹریلیا کا ایوارڈ ملا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اس قسم کی کا ایوارڈ وہ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ چیلنج ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ توقعات لوگوں کی بڑھتی ہیں کہ آپ کو ہم نے اس قابل سمجھا، لہٰذا آپ کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب آپ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ آپ اس توقع یا ان توقعات پر پورا اتریں۔ تو یہ میرے محسوسات ہیں اس بات پر کہ میں نے اس وقت جو یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے وہ صرف محمد علی کی یا میری ذاتی کاوش نہیں ہے، اس میں ساتھ ساتھ میرے وہ 50 سے زیادہ ہیلپرز، والنٹیئرز اور کولیگز جو میری تنظیم ہیلپنگ اے سٹی میں ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ ایک اجتماعی کام ہے، لہٰذا یہ تھوڑا سا زیادتی لگتی ہے مجھے، خاصی حد تک زیادتی لگتی ہے کہ صرف ایک آدمی کو اس قسم کا ایوارڈ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایوارڈ ان تمام میرے ساتھیوں کے لیے ہے جو اس کار خیر میں میرے ساتھ ہیلپنگ اے سٹی میں شامل ہیں۔ ان میں میں ایک بہت بڑا نام یہاں پر ضرور لوں گا آپ کی اجازت سے، وہ منار احمد ہیں۔ یہ وہی منار احمد ہیں جن کا پورا خاندان سڈنی میں بھی بہت سارے کام کرتا رہتا ہے سماجی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عید میلہ بھی منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگی میں کم از کم کچھ خوشی کے چراغ جل سکیں۔
آپ کو کمیونٹی کے کام کے لیے خود کو وقف کرنے کی تحریک کیسے ملی؟
جی، سماجی کام یا کمیونٹی کے کام کے لیے خود کو وقف کرنے کی تحریک کیسے ملی، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور مجھے یقیناً پتہ ہے کہ وقت بہت مختصر ہے، لہٰذا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محرکات میں سب سے پہلے اور سب سے بڑے جو ایک سب سے بڑا محرک جو تھا وہ میرا ذاتی بچپن ہے، وہ ایک جد و جہد سے بھرپور بچپن ہے۔ اور دوسرا، اسی ضمن میں جب میں کراچی میں اس وقت کے حالات بہت سارے لوگوں کے دیکھتا تھا تو مجھ پر زندگی کی کچھ ایسی حقیقتیں واضح ہونا شروع ہوئیں بہت چھوٹی سی عمر میں، کہ کچھ لوگ اطراف میں ایسے تھے जो कि बुनियादी ज़रूरतें हैं जो कि अब उमूमन इंसानी ज़रूरतों के मद में आती हैं, और वो ग़िज़ा या खाना और चार दीवारी से वो लोग महरूम हैं। फिर 1982 से 1985 तक मैं अफ्रीका के एक मुल्क में पढ़ाने के लिए गया। वहाँ पर मैंने भूख और गुर्बत को बहुत करीब से देखा, और वो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और वहाँ से बस दिल ये कहता था कि किसी तरीके से जो कुछ भी है, अगर हम कुछ लोगों की ज़िंदगी संवारने में अपना हिस्सा डाल दें तो यकीन करें कि वो अपने हिस्से में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हालात पैदा होंगे कि न सिर्फ आप ये कर सकेंगे दूसरों के लिए, और उसके मुकाबले में उसके इवज़ आपको जो खुशियां मैसर आएंगी उनका कोई मोल नहीं मिल सकता। लिहाजा कराची वापस आकर मैंने छोटे पैमाने पर काम शुरू किया, लेकिन उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। जब मैं ऑस्ट्रेलिया यहाँ कैम्ब्रा में आया तो कुछ ही अरसे के बाद यह एहसास होना शुरू हुआ कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत मुख्तलिफ और बहुत अच्छी जगह है, और उसमें कैम्ब्रा भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे कोने मौजूद हैं, कुछ ऐसी खामोश गलियां मौजूद हैं जहाँ पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि ज़िंदगी की जद्दोजहद में पीछे रह गए हैं, जो कि डे टू डे यानी रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसी उनकी प्रॉब्लम्स हैं जिनको जिनमें बस बसा औकात फूड की प्रॉब्लम भी शामिल होती है, जिसमें होमलेसनेस या बेघर होने का मामला भी है, जिसमें ऐसा मसला खसूसी तौर पर चंद ऐसी ख़वातीन जो कि किसी भी घरेलू नाचाकी की वजह से अलग रहने पर मजबूर हुई, उनके मामलात हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब मैं सरकारी मुलाजमत में था, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में 24 साल था, तो मैंने वहाँ भी एक ग्रुप इस तरीके से अपने दोस्तों का बनाया कि हम वहाँ पर भी तकरीबन $10,000 साल के मुख्तलिफ तरीक़ों से जमा कर लेते थे, जिसमें एक करी लंच होता था साल में और मॉर्निंग टीज वगैरह होती रहती थी। तो वो $10,000 हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस साल नॉमिनेट करके और दे दिया करते थे। फिर 2018 में जब मैंने सरकारी नौकरी को खुदा हाफिज कहा, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर ये बेबी पैदा हुई जिसका नाम हेल्पिंग ए सिटी है। और हेल्पिंग ए सिटी का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैम्ब्रा में और कैम्ब्रा के अतराफ में कोई भी ऐसा शख्स जो कि फूड की वजह से जो कि भूखा सोने पर मजबूर है, वो भूखा ना सोए। ऐसा हुआ कि शुरू में 4 लोग शामिल थे जिसमें मनार भी शामिल थे, और फिर मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया वाली बात हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 वॉलंटियर्स या हेल्पर्स मौजूद हैं।
कम्युनिटी की खिदमत के दौरान आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या दरपेश आए?
रहा इस बात का ताल्लुक कि कम्युनिटी की खिदमत के दौरान इस पूरे 8 साल के अरसे में हमें क्या चैलेंजेस या मुझे क्या चैलेंजेस पेश आए, उसमें 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं जो कि मैं अपने सामईन की नज़र करूँ। एक ये था कि लोगों का एतमाद हासिल करना। जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे लोग सुन तो लेते थे, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात हमें ये बताते थे कि इन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि हम ये करना चाह रहे हैं। फिर दूसरा मरहला उस वक्त आया जबकि कोविड आया था। कोविड में मुझे फ़ख्र है कि अगर 4 ऐसी चैरिटीज़ जो उस वक्त बिला खौफ व ख़तर रोड पर थीं और मुसलसल जो कोविड ज़्यादा लोगों को फूड या दूसरी चीज़ें उनकी ज़रूरत की पहुंचा रही थी, उन 4 चैरिटीज़ में एक हेल्पिंग ए सिटी भी थी जो कि कैम्ब्रा में, कि एक जहन है जो कि बना हुआ है, और वो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का मामला है कि ये माइग्रेंट्स जो हैं ये यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर ये है सोच के भाई ये सिर्फ लेने लेना जानते हैं, ये देना नहीं जानते। तो इसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज था शुरू के 2 सालों में। लेकिन फिर दूसरा एक और रुख उसका ये था कि एक चैलेंज उससे भी बड़ा ये आया कि वो लोग जो कुछ अतिया दे सकते थे, जो कुछ फंड दे सकते थे, जो कुछ ग्रांट मिल सकती थी, ग्रांट तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन ऐसे लोग जो कि डोनेशन दे सकते थे, जो कि अतियात दे सकते थे, उनका एतमाद हासिल करना, उसमें आप यकीन करें कि 2 साल का अरसा लगा।
आप इस एजाज के जरिए अगली नस्ल के कम्युनिटी लीडर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं?
अगली नस्ल के ऐसे लोग जो इस किस्म के कामों में आना चाहते हैं और वो रहनुमा भी बनना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ मेरा पैगाम ये है, बल्कि मेरी इल्तिजा ये है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि ये खैराती काम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ ये कि हेल्पिंग, मदद करने का जो काम है किसी के लिए भी, वो एक ऐसा काम है कि जिसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि किसी की मदद कर देने से, चाहे वो आप दामे करें, दर में करें, सुखने करें, किसी भी तरीके से अपने टाइम देकर करें, उसमें आपका कोई ज़ाती नुकसान कभी भी नहीं होता है। और जितना आप करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं कि आपको बहुत सारी गैर महसूस तरीके से मदद मिलती रहती है। तो एक तो बात यह है कि ये जो काम है ये नुकसान का सौदा नहीं है, ये नफे का सौदा है, इसको बहुत ज़रूरी तौर पर समझना चाहिए। दूसरा ये कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुद हमारी कम्युनिटी में एक जज्बा जो कि कूट कूट कर भरा हुआ है, वो ये है कि हम पाकिस्तान में गुर्बत और पाकिस्तान में ऐसे लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं उनके लिए करें, यकीनी तौर पर आप यकीन करें कि उनके लिए ज़रूर करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरी ख्वाहिश ये है और मेरा मेरा सिर्फ आपसे मेरी आपसे सिर्फ इल्तिजा ये है कि हमें अपने आसपास भी देखना चाहिए, क्योंकि हम अब यहाँ रह रहे हैं और एक जिस तरह पाकिस्तान की मिट्टी का कर्ज हम पर है, उसी तरह यहाँ की मिट्टी का भी यकीनन हम पर कर्ज है।
क्या आप वो लम्हा शेयर कर सकते हैं जब आपको पहली बार मालूम हुआ कि आपको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है?
जिस वक्त ईमेल मेरे पास आई ये इत्तला लेकर के मुझे अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया गया है, और ये कि पीर 8 जून को इसका किंग्स बर्थडे पर ऐलान होगा, तो सबसे पहला जो मुझ पर गुजरी, जिसे कहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो बेयकीनी थी। मुझे कतई यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में ये अवार्ड मुझ जैसे आदमी के लिए है। फिर जब यकीन आना शुरू हुआ तो बकौल गालिब के असद, खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, और फिर कुछ देर के बाद जब और यकीन आया तो तशक्कुर के आंसू बिला वजह आंखों में आने लगे। और ये सिर्फ बिला वजह नहीं थे, मुझे पता था कि मैं न सिर्फ उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, जिन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया, दूसरा ये कि उन लोगों का शुक्रगुजार कि जिन्होंने मुझे केस बनाकर आगे भेजा, और सैम मास्टन, एक्सलेंसी सैम मास्टन का बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने उस पर मोहर सब्त की कि हाँ ये आदमी इस काबिल है कि इसे ये दिया जाए। और बाद में फिर एक ही फीलिंग थी और वो तशक्कुर था अल्लाह ताला का, वो शुक्र था अल्लाह ताला का कि ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है।
सामईन रवां साल ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एजाज हासिल करने वाले जनाब मोहम्मद अली साहब की SBS उर्दू से खुसूसी गुफ्तगू आप सुन रहे थे इस पॉडकास्ट में।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।